श्रीमद् भागवतम 10:25 डेट 27 फरवरी 2015 स्पीकर कमल लोचन प्रभु
पर्जन्यकाल आगते शब्दार्थ इस प्रकार है अष्टौ आठ मासान महीनों के दौरान निपीतम पिया हुआ यत जो भूम्याः पृथ्वी का च तथा उदमयान जल से युक्त वसु संपत्ति सगोभी अपनी ही किरणों से मोक्तुम मुक्त करने के लिए आरेभे प्रारंभ किया। पर्जन्यः सूर्य ने काले उचित समय आगते आ जाने पर अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद सूर्य ने अपने किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। तात्पर्य आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपत्ति के भाप बनने की तुलना राजा द्वारा कर वसूल करने से करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण में भाग 1:20 इस रूपक की व्याख्या इस प्रकार की है। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से सींचा गया संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की तरह से सभी पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप बनाकर उड़ाता है और यह जल बादलों के रूप में संचित होता है जो आवश्यकता रूप जल के रूप में बांटे जाते हैं। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह की कर लगाती हैं जिससे नागरिक समुदाय कृषि व्यापार तथा उद्योग जैसे अपने भौतिक कर्म से चुकता रहता है। इस तरह सरकार आयकर तथा विक्री कर से के रूप में भी कर लगा सकती है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल सींचने से दी गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल की बादल में बदल कर सारे विश्व में वितरित करती है। इस तरह सरकार द्वारा करों की जनता में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई कार्य आदि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए ही कर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग राजा को जन कल्याण में किया जाना चाहिए। ओम ज्ञानवृंदस्य ज्ञानांजनशलाके शिक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणनिता श्रीशाखां तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी ये जो अध्याय चल रहा है वर्षा ऋतु का वर्णन, ऑटम सीजन, शरद ऋतु का वर्णन जो है, ये ऋतुओं का वर्णन ये अध्याय में जो प्राप्त हो रहा है इसके ऊपर बहुत व्याख्या हैं, अनेकों आचार्यों ने किया है। खास करके श्रील विश्वनाथ ठाकुर प्रत्येक श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 1961 की बात है, उस समय उनको एक निमंत्रण मिला था, जापान से निमंत्रण मिला था, यूनाइटेड नेशन से मिला था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे प्रभुपाद जी को निमंत्रण मिला था कि जापान में हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ह्यूमन राइट्स को क्या बोलेंगे, मानव हक, मानवाधिकार का ये जो होता है उसके ऊपर उनको एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो कॉन्फ्रेंस में प्रभुपाद जी को बुलाया गया था, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि किस प्रकार मैं इस कॉन्फ्रेंस में क्या बताऊं। तब उन्होंने सोचा कि लोगों की जो मति है इतना प्रकृति में लगा हुआ है, भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है, उनको सीधा अगर भागवत सुनाओ तो समझ में नहीं आने वाला है। तो ये भागवत का सिद्धांत को मुझे लोगों को समझाना है और साथ साथ में दसवां स्कंद जो भागवत का मूल सार है वो बताना होगा। अगर कृष्ण के बारे में बताऊंगा तो लोग समझेंगे नहीं। तो बहुत विचार कर रहे थे प्रभुपाद जी। विचार करते करते उन्होंने एक अध्याय को चुना, इस अध्याय के ऊपर मैं व्याख्या करूंगा, प्रेजेंटेशन करूंगा। और इस अध्याय के ऊपर उन्होंने व्याख्याएं की 48 चैप्टर्स में, प्रेजेंटेशन था 48 पेजेस का था, यानी 48 भाग थे उसके अंदर। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कड़ी दिन रात मेहनत करके उन्होंने बनाया, एक एक के ऊपर व्याख्या किया। और उन्होंने विचार किया कि मुझे ये जो चीज़ है यूएन में प्रेजेंटेशन देना है। पता नहीं दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उनको जाना नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। कोई कुछ ऐसी दुर्घटना हुई विश्व में जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन जो प्रभुपाद जी जो लिखे थे उस समय की बात, उन्होंने विचार किया था कि जब मैं उधर प्रेजेंटेशन करूंगा यूएन में जाके, उसको चित्र के रूप में प्रेजेंटेशन करूंगा। तो उस समय उन्होंने विचार किया था कि मैं कौन सा आर्टिस्ट को लूं, जैसे कि आप ये पिछले श्लोक में देखा कि बादल है, नक्षत्रों को छा गया है और बादल में बिजली है। तो ये सारे जो बातें हैं, एक ऐसा चित्रीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और प्रभुपाद जी ने और भी किया था, उसके ऊपर एक गीत भी लिखा था, एक एक पद्य इंग्लिश में एक गीत लिखा था, पोएम लिखा था। उनका ये विचार था कि मैं कोई आर्टिस्ट को बुला के करूँ। बाद में प्रभुपाद जी को समय नहीं मिला, इस्कॉन की स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया और प्रभुपाद जी का तिरुभाव हो गया। उसके बाद एक साल की बात है, तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो खास करके बीबीटी में, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी इसलिए हम एक बुक छापेंगे। एक चाइना के, प्रभुपाद जी का विशेष इच्छा थी कि चाइना के आर्टिस्ट को बुलाया जाए। एक चाइना के आर्टिस्ट को बुला के उनको एक साल के अंदर तो ये सारे एक एक श्लोक के जो चित्रीकरण बनाया, चित्र बनाए एक का, और दो किताबों के रूप में छापा गया था। और प्रभुपाद जी ने उस किताब का नाम, उस प्रेजेंटेशन का नाम दिया था द लाइट ऑफ भागवत, यानी भागवत का प्रकाश। आपको हिंदी में किताब मिलेगा भागवत प्रकाश करके एक किताब मिलेगा। यानी प्रभुपाद जी 1961 इस्कॉन की स्थापना होने के पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना के पहले उन्होंने कुछ छोटे किताबों की रचना किए थे। उनमें से पहला किताब था ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसके बाद वाला किताब है भागवत प्रकाश, जो इस अध्याय के ऊपर आधारित है। तो बाद में उन्होंने दो रूप में छापा इस अध्याय को बीबीटी ने। एक है केवल चित्र, चित्र के साथ एक एक पोएम था, और दूसरा भाग था वो पूरा प्रभुपाद जी ने जो लेख लिखा था एक एक श्लोक के ऊपर, एक तो पूरा, और उन्हीं चित्रों को ब्लैक एंड व्हाइट में हल्का सा किया था। अब भागवत प्रकाश या लाइट ऑफ भागवत लेंगे, वो बुक में आपको ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा पिक्चर मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल जो पेंटिंग किया गया है वो बड़ा साइज में है। केवल पेंटिंग और छोटा सा पोएम था, क्योंकि लोगों के पास इतना मति नहीं है सब पढ़ने की, इसलिए दो रूपों में इसको छापा गया था। ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है लाइट ऑफ भागवत, और उसके अंदर जो प्रकृति के ऊपर आधारित होते हुए अनेक अनेक उपमाएँ अनेक अनेक उदाहरण प्रकृति से लेते हुए हमारी जो वैष्णव सिद्धांत है उसको स्थापना किया गया है। वैसे जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, वैसे तो पहले के दो तीन श्लोक आसान हैं, आगे के श्लोकों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत मुश्किल होता है समझना। लेकिन प्रभुपाद जी ने सोचा कि कृष्ण को जानना है, कृष्ण को समझाना है, तो सीधा हम कहेंगे कृष्ण नवयवनम च, नवयवन है वो, पुराण पुरुषम नवयवनम च, उनको बोलेंगे कृष्ण घुंघराले बाल है, अरविंद दलायताक्षम, ऐसा बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं और सोचेंगे क्या बात कर रहा है। तो कृष्ण को समझने की दो तरीका है, ये हमारा सिद्धांत है, हमारा वेदांत है, बलदेव दर्शन पूजल जीव गोस्वाई पाद, और हमारे आचार्यों ने श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी इसी प्रकार कृष्ण को समझाया है। कृष्ण को सीधा समझने के लिए प्रयास करेंगे तो असंभव है। कृष्ण को समझना है तो केवल उनकी शक्तियों के द्वारा ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा ओनली थ्रू हिज एनर्जीज। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है परा प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति। आप सातवें अध्याय में जानते हो ना, भूमिरापनलो वायुर्मकम मनोबुद्धि च अहंकार वितिम्मे भिन्ना प्रकृति दृष्टता, एक प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्मे परामे, दूसरा श्लोक में उन्होंने कहा अपरेयमितः, जो पहले की जो वर्णन किया गया वो कौन सा शक्ति है, अपरा अपरा शक्ति है। इतस्तु अन्यम, इसके अलावा और एक शक्ति है विद्धि, जानो कौन सा शक्ति, उसका नाम क्या है, विद्धि, मे पराम पराशक्ति है। तो ये जो परा शक्ति है भगवान की, विद्धि में पराम, वो क्या है, जीव, जीव भूता महाबाहो, एक है जीव के द्वारा भगवान को समझना, जीवी भगवान की शक्ति है, एक सब्जेक्ट है। और उनकी जो अपरा प्रकृति है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसके द्वारा भगवान को समझना। द माइक्रो कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द मैक्रो कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग, श्री जीव गोस्वामी पर इस प्रकार कहते हैं तत्व संदर्भ में। ने कहा कि जीव को जानते, जीव को जीव को समझने के द्वारा हम क्या समझेंगे, भगवान को नहीं समझेंगे। इसलिए सबसे पहला भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा, जीव क्या है उसके विषय में कहा। दूसरी ओर क्या है, पूरा प्रकृति है, प्रकृति को समझते समझते भगवान को समझना चाहिए। तो इसलिए भागवतम में आप देखिए दशमश्च विशुद्ध्यर्थम, ये 10 लक्षणों को वर्णन किया गया। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति है। भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ, प्रलय क्या होगा, स्थान क्या है, पोषण कैसे करते हैं भगवान, हाँ ये सब प्रकृति के संबंध है, भौतिक जगत के संबंध है। तो इसलिए भौतिक जगत के विषय में भागवत में वर्णन होता है और जीव के विषय में वर्णन होता है, क्योंकि ये दोनों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। कृष्ण को शक्तियों के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है। सीधा कृष्ण को जानने के लिए आप कभी हम प्रयास नहीं करना चाहिए, और होगा भी नहीं, प्रयास करेंगे तो भी होगा नहीं। अभी श्री प्रभुपाद ने सोचा लोगों का मति जो है प्रकृति में है, भौतिक जगत में उनकी मति है तो नेचर में है, तो उन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण को समझाऊंगा, हमारे सिद्धांत को समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा, पहले से उनका मति, उनका आकर्षण प्रकृति में है, इसलिए प्राकृतिक चीजों को वर्णन करते करते मैं कृष्ण का वर्णन करूंगा। क्योंकि थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, थोड़ा सा व्यक्ति सात्विक होता है ना, बड़े वो नास्तिक भी क्यों ना हो, किसके अंदर थोड़ी सी सात्विकता होती है, उसको वही प्रकृति की ओर आकर्षण होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है आजकल लोगों का प्रकृति से भी दूर जा रहे हैं। उनको अगर बोलेंगे कि गाय का दूध है तो उसके मन में ऐसा आता है कि दूध कहाँ से आता है, वो फैक्ट्री से निकलता है। पूछें कौन सा कंपनी का दूध है, आजकल कोई ये नहीं बोलता कौन सा गाय का दूध है, ठीक है नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बोले कौन सा कंपनी का है। ये औद्योगिकता इतना गहराई से बढ़ गया है लोगों के मन में, वो सोचते हैं कि अभी चावल भी लोगे कौन से चावल है, कौन सा कंपनी का है, कौन से फैक्ट्री से आया, कंपनी फैक्ट्री, यही दो चीज़ें मन में घूमता रहता है। उनको ये पता नहीं लगता है कि ये कौन सी खेती से है, खेती से आता है हाँ, या दूध जो है गाय से आता है, ये लोगों धीरे धीरे भूल रहे हैं। उनको ज़बरदस्त सोचना पड़ता है, हाँ गाय देती है दूध ऐसा, लेकिन मन में बैठा हुआ है कि ये तो कोई कंपनी से आता है, कौन सा दूध चाहिए, अमूल का दूध है, कौन सा दूध है वो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कौन सा जर्सी गाय का है, होल्स्टीन का है, देसी गाय का, गिर का है, कोई बात नहीं करेगा, गाय का बात ही नहीं करेगा, कंपनी का बात करता है कि नहीं। तो इतना जड़ दिमाग हो गया, अभी क्या करें बताओ। लेकिन प्रभुपाद जी 1961 की बात है, तो लोगों के अंदर उनके ऐसा था कि जो कॉन्फ्रेंस में आएंगे कम से कम उनके अंदर थोड़ी सी सात्विकता रहेगी, तो उनको सात्विक व्यक्ति जो है प्रकृति में ज़्यादा रुचि रखता है, इसलिए प्राकृतिक चीज़ों को वर्णन करते हुए साथ साथ में सिद्धांत को भी दिया जाए। तो ये अध्याय जो है बड़ा विशेष है, भले ही भागवत का है, भले ही भागवत का 10वां स्कंध का है, तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो अध्याय के द्वारा मैं यूएन में प्रचार करूँगा, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में प्रचार करूँगा। इसलिए उनका जो लिपि है, उसका शैली है लाइट ऑफ भागवत का, ये बहुत ही अद्भुत है। बाकी जो अन्य जो किताबें प्रभुपाद जी पढ़ोगे और उसमें और प्रभुपाद जी का ये जो लिपि है इसका तात्पर्य में, उनके लिखने की शैली में अंतर है, और भी बहुत गहराई से बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने श्लोक का आज ये श्लोक है, उस श्लोक के प्रभुपाद जी ने क्या कहा उसको मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस समय प्रभुपाद जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया, अगर मैं इस अध्याय को यूएन में प्रस्तुत करूंगा, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में सारे राष्ट्र के नेता लोग एक जगह है, अगर ये लोग इस बात को समझ जाए पूरा विश्व सुधर जाएगा। उनके मन में ऐसी तीव्र इच्छा थी ताकि ये लाइट ऑफ भागवत जो है इसका प्रेजेंटेशन हो जाए सारा विश्व में, यूएन में। इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा वो थोड़ा पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। भले ही इस श्लोक में ऐसा लिखा गया अष्टमासान निपीतम यत, बात यह है कि सूर्य क्या करता है, अष्टमासान, अष्टमासान मतलब क्या है, आठ मास तक वो निबीत मतलब पीता है। किसको पीता है? वो वसुहु, वसु मतलब धन को पीता है। जल जो है उसको भूमि का धन माना गया है, इट इज अ वेल्थ ऑफ अर्थ। लेकिन आजकल पैसों को स्टॉक एक्सचेंज में आने वाला जो चीजें हैं या औद्योगिक चीजों को धन माना गया है, लेकिन वास्तविक धन क्या है? जल। और वो जब तक वो जल नहीं रहेगा तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं उगेंगे, फसल नहीं उगेंगे तो कोई औद्योगिक चीजों के लिए कोई चीज नहीं मिलेगा, औद्योगिक चीज के लिए भी चाहिए तो आपको जल की आवश्यकता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जल को भू वसु कहा गया, वसु मतलब धन, भूमि का जो वसु है वो ये जल है। तो ये जल भूमि का वसु को क्या करता है? पृथ्वी पीता है, सूर्य क्या करता है? पीता है। तो पी के वो क्या करता है? वो बादलों के रूप में वो कन्वर्ट करता है, भाप बनाता है और बादल बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। स्वगोभिर, तो जैसे श्लोक में कहा गया है, स्वगोभिर मोक्तुम आरेवे, तो आरेवे का मतलब क्या है? स्वगोभिर अपने ही किरणों से, गो मतलब उनके किरण, उनके सूर्य के हाथ क्या, तो सूर्य की इंद्रिय क्या, उनके किरण। तो स्वगोभिरी मोक्तुमारे भे, वो सब संचित करके बादलों के रूप में कन्वर्ट करके क्या कर, परजन्य कालागते, जब जरूरत पड़ता है क्या करता है सूर्य? परजन्य बारिश के रूप में देता है। यानी उसी पृथ्वी से जल लिया सूर्य ने, जल लेके क्या किया वो सूर्य, और जब समय आने पर उसी पृथ्वी को वापस प्रदान किया। तो इसका तुलना किया गया है, श्री विश्वनाथ जी ठाकुर उसका तुलना करते हैं किससे? सरकार से। सूर्य का तुलना इधर सरकार से की गई है। जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है? गवर्नमेंट, सरकार क्या करता है? सबसे पहला कर लेता है, टैक्स वसूल करता है। मान लो कि आप इतना कमा रहे हो, इतना इनकम है, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। आप इतना सेल कर रहे हो, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे अनेकों अनेकों प्रकार, इतना सर्विस दे रहे हो, इतना सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स। हाँ, ये तो तीन मेजर हैं, लेकिन साथ साथ में अनेकों 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 प्रकार के टैक्स है जिसको समझना मुश्किल है। ये टैक्स जो है आजकल लोगों का मती से बाहर हो गया है, टैक्स से कैसे बचना सोचते हैं। तो सरकार अलग प्रकार के टैक्स देता है, धन लेता है, और क्या करता है? वही सरकार जिन प्रजा से धन लिया है टैक्स के रूप में, उसी प्रजा को सुविधा के रूप में, उनको कल्याण करने के लिए, उनके कल्याणकारी कार्यों में लगाता है। तो ये इस प्रकार होना चाहिए, यानी प्रकृति के जो कार्य है उसी का तुलना किया है एक सिद्धांत को पेश आने के लिए, सरकार को कैसे व्यवहार करना चाहिए। अभी देखते हैं श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर उन्होंने किस प्रकार व्याख्या की है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वी शुड ऑलवेज नो दैट गॉड इज एवर काइंड टू अस। सबसे पहला, क्योंकि बारिश जो है ऐसी चीज है जो उसके बिना कोई पूरा आर्थिकता ना, एक देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो बारिश के ऊपर आधारित है। अगर बारिश बराबर नहीं है तो बहुत समस्या होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बारिश जो है भगवान की कृपा से होती है। ऐसा नहीं कि हमने जैसे नल चालू किया तो पानी आता है जब चाहे तब, तो बारिश ऐसे हम नल चालू करेंगे बारिश आता है, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है कि नहीं? तो ये जो आधुनिक यांत्रिक चीज़ें हैं उसके वजह से हमारा मन उसकी आदत होने की वजह से हम सोचते हर चीज़ मेरे नियंत्रण में है। भगवान की कृपा के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। जैसे जितना आप ऑटोमेटिक बनाओगे, जितना चीज़ें आप यांत्रिक बनाओगे, उससे क्या समस्या क्या है? बोलोगे आप सुविधा बोलोगे, भले ही आपको लगता है ये सुविधा, लेकिन अस्तित्व में सुविधा नहीं है। हमारी जो मति है जो भगवान में लगना चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भर करने की जो प्रवृत्ति है, वो चीज़ हमारे मन से निकल जाता है। वो सोचता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, मोटर खराब हो गया है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं आई इसलिए पानी नहीं आया। कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने अभी हमारे ऊपर कृपा नहीं किया है। अभी गांव में जाइए तो बोले कि खेती क्यों नहीं हो रहा है, बोले भगवान का कृपा नहीं है, भगवान की कृपा से हमको बारिश हुआ है। तो मान लो कि शहर में आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, हड़ताल किसकी, क्या बात करोगे, सरकार खराब है क्या, ये गड़बड़ है, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो तुम्हारा हमारे मती कहाँ जाता है, पानी आया या नहीं आया, दोनों समय में मती कहाँ जाता है, हमारे मती जाता है कोई यांत्रिक चीज है, लोहे के ऊपर बन जाता है, यांत्रिक चीज है, लोहा, लोहा से बना हुआ है, लोहा मत तमोगुण। अगर आप गांव में हो तो क्या हो गया, कुआं में से पानी निकलता है तो कुआं सूख गया तो हे भगवान कुएं में पानी आ जाए, पानी आ गया तो बोले भगवान की कृपा से आ गया। यानी प्रकृति से जितना नजदीक रहोगे भगवान में मति उतना आसानी से लगेगी, ये स्वभाव है। तो श्री प्रभुपाद जी सबसे पहले इसी बात को कहते हैं कि भगवान जो है बड़े कृपालु, एवर काइंड ऑन डिस्पाइट आवर गॉड आवर ग्रॉस डिसोबीडियंस लॉर्ड्स ऑफ नेचर, द लॉर्ड इज काइंड ऑफ टू लुक आफ्टर आवर मेंटेनेंस। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि उस समय बहुत सारे युद्ध से युद्ध हो रहा था, ऐसे विश्व युद्ध तो दो हो गए, खत्म हो गए, 61 की बात है, उस समय इंडिया चाइना का वॉर भी चल रहा था और भी विश्व में अनेकों अनेकों बातें चल रही थी। तो प्रकृति के ऊपर कितना भी गलत व्यवहार करें हम, लेकिन भगवान बड़े कृपालु है। जैसे माँ को बच्चा लात मारता है, लात मारने पर भी माँ जो है बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करती है, क्योंकि माँ के अंदर कृपा है। तो प्रभुपाई इस बात को ये नहीं कह रहे थे भगवान बड़े कृपालु है, कृपा करके हमको हरिनाम दिया है, वो बोलेंगे तो समझ में नहीं आए जीवन में लोगों के, ये सब क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि द लॉर्ड इज काइंड एनफ टू लुक आफ्टर आवर मेंटेनेंस, हमारा जो मेंटेनेंस है, हमारी जो देखभाल भगवान करते हैं। प्रभुपाद ने कहा वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ आवर मेंटेनेंस, बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नाइदर प्रोड्यूस फूड नॉर क्वेंच आवर थर्स्ट। तो जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना ना हम अन्न उगा सकते हैं ना हम प्यास को बुझा सकते हैं। हमारा खाना पीना बोलते हैं ना, खाना पीना दोनों बंद हो जाएगा अगर पानी नहीं रहेगा तो। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लिबरली फॉर मेनी अदर पर्पसेस, केवल खाने पीने के लिए नहीं, हमारे स्नान के लिए हो, अनेकों अनेक किसी को साफ करने के लिए हो, बहुत सारे चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता है। Thus the Lord has preserved water on the 3/4 of the globe and has made it salty to preserve it. Prabhupada ji dekhi kitna science malum hai unko. To Prabhupada ji ne kaha isliye Bhagwan ne kya kiya, 3/4 pani banaya prithvi mein, 1/4 jo hai wo zameen banaya. Hum log mara mari karte zameen ke liye, lekin ye mera zameen hai, koi nahi bolte ye mera pani hai, ye murkhta hai, unko malum nahi pani sabse mahatvapurna hai. मान लो आपके पास 100 acres जमीन लेकिन पानी नहीं तो क्या करोगे, हाँ कोई फायदा नहीं, भले आपके भाई को छोटा सा 1 acre भी जमीन है, पानी है तो आराम से खा पी के रह सकते हो। तो श्री प्रभुपाद ने कहा अभी भगवान ने क्या किया, उन्होंने ये जल 3/4 पृथ्वी का जल बनाया, और उसको आप बोलोगे बनाया जल लेकिन खारा बना दिया, लेकिन हे मूर्ख सुनो, भले ही भगवान ने खारा क्यों बनाया, मानो उसके अंदर बुद्धि है, अगर उसके अंदर नमक डालेंगे तो सड़ता नहीं है, आप कोई भी चीज़ में नमक डाल के देखो सड़ता नहीं है, नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अचार में बहुत सारा नमक डाला जाता है क्योंकि नमक डाल दिया वो सड़ता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद को ये बात भी मालूम था, अभी कोई बोलता ये भगवान ने बना दिया लेकिन खारा पानी है, कोई काम का नहीं है, लेकिन यही खारा पानी की वजह से आपको मीठा पानी मिल रहा है, खारा चीज़ नहीं डाला होता भगवान ने तो ये जो इस प्रकार का डिजाइन नहीं किया होता तो आपको ये कभी जल ही नहीं मिलता, हाँ क्योंकि सड़ जाता जल। आप देखिए कोई भी पानी लीजिएगा, वैसे आप बंद करके रखिए 4-5, 1 हफ्ता, 10 दिन के बाद वो सड़ जाता है, हाँ अगर उसके अंदर नमक डाल के रखो वो सड़ता नहीं, नमक जो है प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। आजकल तो केमिकल का प्रिजर्वेटिव बनता है, नमक का प्रिजर्वेटिव कोई यूज़ नहीं करता है। आगे हाँ, और भी एक पानी के विषय में जो बात आई है वो डिज़ाइन के बारे में हम लोग जनरली भगवद्गीता कोर्स में इस बात को कहते हैं, भगवान किस प्रकार ये प्रकृति बनाया है, हर चीज़ के पीछे उनका एक डिज़ाइन है। अभी देखिए कोई भी वस्तु है, हाँ वो उसका गैस फॉर्म जो है वो हल्का रहता है, जिसका जो लिक्विड फॉर्म है और थोड़ा जाड़ा रहता है, उसका सॉलिड फॉर्म और जाड़ा रहता है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए, पानी ऐसा चीज है, जल ऐसा चीज है जो उसका जो सॉलिड फॉर्म यानी आइस, आइस से भारी है। आइस को आप डालेंगे जल में, क्या होता है, वो तैरता है। लेकिन कोई भी जड़ वस्तु होता है, वो पानी वाला बहने वाला वस्तु होता है, उससे वो उसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, वो डूबना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, खाली पानी के साथ है और कोई चीज के साथ नहीं है। कोई हाइड्रोजन लीजिए, कोई ऑक्सीजन लीजिए, कोई भी तत्व लीजिए, उसका जो जो लिक्विड फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म से वो हल्का रहता है। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म वाटर जो है, पानी जो है, वो ज्यादा भारी है। ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि भगवान को मालूम है, क्योंकि जैसे समुद्र में नॉर्थ पोल साउथ पोल वो जगह पे समुद्र में मान लो कि टेम्परेचर तापमान शून्य से नीचे चला गया, जब शून्य से नीचे गया तो क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। अगर आइस पानी से भारी होता तो क्या होता है, आइस को आइस नीचे डूब जाता है और ऊपर का जो पानी है वापस क्या बनता है, आइस बनता है, फिर डूब जाता है। इस प्रकार सारा समुंदर का पूरा पानी आइस बन जाता है, मछलियां क्या हो जाती है, मर जाती है कि नहीं, हाँ मछलियां मर जाती है। इससे भगवान ने सोचा क्या किया, नहीं आइस को हल्का बनाऊंगा। तो आइस जैसे है हल्का बनाया, जो ऊपर का जो पानी आइस बन गया तो क्या हुआ, आइस ऊपर ही रह गया। तो आइस का और एक गुण है, क्या है वो इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो अंदर का जो पानी है उसका तापमान को बचा के रखता है, उसके तापमान को बचा के रखता है, ताकि ऊपर का जो आइस है ऊपर ही रहेगा, अंदर जो है पूरा पानी रहेगा, ताकि सारे जो मछलियां हैं वो सब चीज जो है वो अच्छी तरह से जी सके। तो ये प्रकृति का नियम को भगवान ने इतना अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, उसको समझने के लिए हमारा बुद्धि काम नहीं करता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इस प्रकृति को मैं शोषण करूंगा, समझने का भी योग्यता नहीं, हम उसको तोड़ना चाहते, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब मान लो किसी ने आपको गुलाब का फूल दिया, कितना सुंदर चीज है, लेकिन हम कोई सोचते नहीं, हम इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो श्री प्रभुपाद आगे कहते हैं, द लॉर्ड हैज एंगेज्ड द पावरफुल सन टू एवोपरेट द वाटर ऑफ द प्लैनेट्स लाइक अर्थ एंड डिस्टिल इट इनटू क्लियर वाटर इन द क्लाउड्स एंड देन स्टॉक इट ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन एज वी स्टॉक वाटर इन द ओवरहेड टैंक्स फॉर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, अभी पूरा बिल्डिंग को पानी देने के लिए क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक होता है ना, वहाँ पानी भर के रखते हैं ताकि सबको पानी मिले। तो ये तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो सिस्टम जो है भगवान ने पहले से बनाया, क्या बनाया, सूर्य जो है वो जल को वो पी लेता है, पी के कहाँ स्टोर करता है, हिमालयों में। तो हिमालय जो है सबसे बड़ा ओवरहेड टैंक है, इससे बढ़कर कोई ओवरहेड टैंक है नहीं। आगे तो पार्ट स्टॉक और आइस बन गया, तो ओवर टैंक में आइस बन गया और धीरे धीरे से आइस पिघलता है, ताकि हमको जितना जरूरत है उतना ही पानी मिलता रहे। आगे द आइस मेल्ट्स ग्रेजुअली थ्रू आउट द ईयर फ्लोज डाउन थ्रू द ग्रेट रिवर्स एंड स्लाइड डाउन द स्ट्रीट्स अगेन फॉर प्रिजर्वेशन। वो पूरा नदियों के रूप में पानी बहते हैं, फिर वापस समुद्र में मिलता है, ताकि वो वापस समुद्र में जाके वो प्रिजर्व हो जाए, वो सड़ ना जाए। Therefore, the laws of God's nature are neither blind nor accidental. अब देखिए प्रभुपाद एक एक लाइन में क्या लिखते हैं। तो भगवान के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, वो अंधापन से नहीं बना है और ना एक्सीडेंटल है, बाई चांस बना दिया, जैसे आजकल के लोग कहते हैं। As men with poor fund of knowledge conclude, behind the laws of nature in the living brain of the Lord, just as there is always a lawmaker behind all the laws of the state. प्रत्येक कानून के पीछे कानून बनाने वाला रहता है, वैसा नहीं कि अपने आप से कानून बन जाता है, हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। It does not matter whether or not we see the lawmaker behind the common laws. जैसे ट्रैफिक के एक नियम है, नियम किसी ने बनाया ना, हाँ ट्रैफिक के नियम के हिसाब से सब चल रहा है, तो आप बोलोगे ट्रैफिक के नियम है लेकिन उसके पीछे कोई है नहीं, भले ही उसके पीछे पुलिस दिखे ना दिखे, सरकार दिखे ना दिखे, नियम बनाने वाला कोई ना कोई है। द लॉर्ड सेज इन भगवद गीता द नेचर वर्क्स अंडर माय सुपरिंटेंडेंस, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अथर्ववेद में इस बात को कहा गया है, अथर्ववेद में भी इस बात को कहा, प्रधान प्रकृति पुरुषः, अथर्ववेद की बात भी इस बात को प्रभुपद लिखते हैं। The Lord distributes His mercy in the form of rain of on the scorched earth at times of dire necessities. दूसरी तरीके से क्या करते हैं भगवान, वो बारिश को प्रदान करते हैं। He supplies rain when it's practically in the verge of death, the want of water. जब एकदम बिल्कुल इतना तप्त हो गया सूर्य की वजह से, पूरा गर्मी का मौसम निकल गया, एकदम बिल्कुल तप्त हो गया, सब एकदम जल की आवश्यकता है, तब बारिश शुरू होता है। वी आर एटर्नल रिलेटेड विथ हिम, हमेशा उनके साथ हमारा संबंध है। भगवद्गीता कन्फर्म द लॉज ऑफ नेचर वेरी स्ट्रिंजेंट। तो दुरत्तया मम माया दुरत्तया, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद्गीता में कहा गया है, तो प्रकृति के नियम जो है वो बड़े कड़क है, अगर उसके विरुद्ध कोई जाना चाहता है तो निश्चित रूप में वो ना भौतिक सुख तो प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक सुख तो छोड़िए, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार अगर कोई जीता है और प्रकृति को देखता है, भक्ति की देखते देखते कृष्ण के, इसके पीछे कृष्ण का हाथ को देखता है, वो कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार व्याख्या किया है। जैसे मैंने कहा है पहले से, ये श्लोक में जो बातें कहा गया है, खास करके किस प्रकार सूर्य वो जल को पी लेता है, तो ये जल के विषय में सांख्य दर्शन में भी कहा गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भले ही पांच चीजें हैं, ये जो जल है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पांचों के पांचों चीजों में जल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कि आप नहीं भी खाएंगे ना तो भी रह जाएंगे, लेकिन पानी पिए बिना, खाने के बिना कोई रह नहीं सकता। कोई कुछ संस्था के लोग हैं, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं, बिना खाए 40 दिन दो दो महीना रह जाते हैं, लेकिन वो पानी पीते रहते हैं, पानी पीते पीते रहते, लेकिन उनको कोई कमी नहीं होता, उनकी शक्ति में लंबे लंबे चलते भी हैं और कोई थकान महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो पानी ऐसी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल शुद्ध पानी मिलना भी दुर्लभ हो गया। परसों इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने किसी ने कहा भाई आजकल शुद्ध देसी गाय का दूध नहीं मिलता है, ऐसा चर्चा चल रहा था, मैंने कहा दूध देसी गाय का दूध तो छोड़ो, शुद्ध जल भी नहीं मिलता है, यू डोंट गेट प्योर वाटर ऑल्सो। खास करके ब्राह्मणिकल सभ्यता, आध्यात्मिक प्रगति या भक्ति के लिए, शुद्धता के लिए जल की आवश्यकता है। जल के अंदर ऐसी शक्ति है कि कोई भी अशुद्ध वस्तु को वो शुद्ध कर सकता है, इतना हद तक कि आप अगर नहा के भी आएंगे ना डेडी किचन में, डेडी में जाना है तो आचमन करना पड़ता है। जब आचमन करोगे जल के साथ मंत्र को उच्चारण करोगे, है कि नहीं, केशवाय नमः, तो ये जल और शब्द, इन दोनों का जब संस्पर्श होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है, वो शब्द का प्रभाव हमारे चेतना के ऊपर वो हजारों गुना बढ़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण मतलब उनको बहुत सारा जल की आवश्यकता होता है, पाने के बिना यहाँ ब्राह्मण नहीं होता। इसलिए अब देखिए वैदिक सभ्यता कहाँ बसा है, जहाँ जहाँ नदी है उधर वैदिक सभ्यता है, जहाँ नदी नहीं है उधर वैदिक सभ्यता नहीं है। आप कोई भी बड़े शहर देखिए वो कहाँ है, वो नदी के तट के ऊपर है कि नहीं, कोई भी बड़ा शहर लीजिएगा। लेकिन ये वैदिक सभ्यता के अनुसार जो जो हमारी सुरा दैवी सभ्यता जो है वो नदी के तट पे रहता है, लेकिन असुरी सभ्यता कहाँ रहता है, बंजर भूमि में रहता है, या असुरी सभ्यता, असुर लोग जो है जहाँ नदी नहीं रहता पानी रहता उधर रहते, क्योंकि उनको गंदे में रहने का आदत है। वैदिक सभ्यता जहाँ जाए सब नदी के तट में रहता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप मैप खोल के देखिए जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी शहर है, पुरातन शहर है, वो इधर है, वो नदी के किनारे हैं, जहाँ पानी है उधर लोग वैदिक सभ्यता बसी रहती है। इसलिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो पानी जो है, जल जो है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं रसो हम अपसकौंतया एंड द टेस्ट ऑफ वाटर। अगर जल नहीं है आपके शरीर में, जल तत्व का कुछ खराबी है, आप मीठा खाओगे, कुछ भी खाओ, उसका स्वाद नहीं होगा, सब कुछ एक जैसा लगेगा। तो हमारे जो जब अन्न कोई खाते हैं उसका स्वाद भी क्यों होता है, क्योंकि जल की वजह से होता है। जल नहीं है, जल तत्व के अंदर कुछ प्रदूषण है, तो कुछ गड़बड़ है, तो आपको हर चीज़ कड़वा लगता है, मीठा भी दो तो भी कड़वा लगता है। लेकिन आज के देखेंगे जल में इतना प्रदूषण हो गया, पानी नहीं मिलता है, सबसे बड़ी समस्या है, इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ। भी पता नहीं ऐसी परिस्थिति आगे 10 साल में, 15 20 साल में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने से, बिकॉज ऑफ गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। आप कभी भी ट्रेन में जाइए, आपको बड़े बड़े ब्रिज मिलते हैं, ट्रेन जाता है लेकिन पूरा रेती रेती दिखाई पड़ता है, पानी दिखाई नहीं पड़ता है। अभी मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा ब्रिज क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि एक ज़माने में उधर पूरा पानी बहता था। मैं उधर के लोगों को पूछता हूँ पानी आता है, बोलते हैं बिल्कुल एक एक बूंद पानी नहीं आता, एक बूंद, पूरा बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा दिखता है बस पानी, उतना ही। अनेकों अनेकों नदियाँ ऐसा है, आप जब ट्रेन में जाओगे तो ध्यान से देखना, खास करके राजस्थान में कहीं इधर जाओ जाओगे, हर कम से कम 20-25 किलोमीटर आपको एक नदी मिलेगी, लेकिन सब सूखा हुआ, सब सूखा हुआ। तो आप बोलोगे नदी है तो मतलब पानी बहता था, नहीं था, नहीं था। कुछ सालों पहले की बात है, ब्रिज कब बनाया, 30-40-50-60 साल पहले बनाया होगा ब्रिज, यानी वो ब्रिज बनाया मतलब उस समय 30-40-50 साल पहले पूरा पानी बहने वाला था, अभी तो एकदम बिल्कुल एक बूंद नहीं है। मतलब देखो आगे क्या होगा भविष्य में, ये कलयुग का घोर कलयुग में बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए प्रकृति के नियम के साथ में रहना, और हर एक प्रकृति के नियम के पीछे एक गहरा तत्व है उसको समझना, और उसके पीछे कृष्ण का हाथ है ये देखना, ये भक्ति कहा जाता है। कृष्ण को समझने का यही तरीका है, जो हमको इस अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से आपको पता लगेगा। जब भी इस अध्याय के श्लोकों को आप पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का जो लाइट ऑफ भागवत है वो किताब का भी मिले, भागवत प्रकाश करके किताब है, उसको साथ में आप उसको पढ़ के सुनने का आदत रखिएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? ठीक, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।